ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं श्रृणवतीं श्यामलङ्गीं नस्तिकाङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लगीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमाला नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपत्रं मधुरमधुमदां चित्रकुरभाषिभालं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादुत्रभाष्यकृत वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। गीता जी के नौवां अध्याय श्लोक संख्या दसवां। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः शूयते सचराचरम् हेतुनानेन कुन्तेय जगद्वी परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो तमहेश्वरम्। ओम शांति शांति शांति। भगवत गीता राज विद्या योग के नौवा अध्याय है। भगवतः श्रीकृष्णः गीयमाना या सा ब्रह्म विद्या इति भगवत गीता ऐसे है। भगवतः श्रीकृष्ण गीयमाना या सा ब्रह्म विद्या भगवत गीता। बालक जब कुछ बोलता है ना वो क्या बोलता है उसको पता नहीं और सुनने वालों को भी पता नहीं रहता। बालक जब बोले तो बोलने वाला जो बालक है वो भी बड़े प्रसन्न भाव से बोलता है और माता पिता जब सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न भाव से सुनते हैं। जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो श्री कृष्ण भगवान से लोगों ने पूछा कि आप ये 700 श्लोक की जो गीता बताई तो आप पहले स्मरण किए थे, रटे हुए थे, क्या किए थे? भगवान ने कहा भगवतः श्री कृष्ण गीयमाना यासा। भगवान जो है ना रोने का काम बहुत किया। जसुदा जी जब भी दौड़ाई, जब चोरी करते पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत रोया, बहुत गाना गाया और एक गाना कुरुक्षेत्र के रणांगण में जब मैंने गाया तो उसका नाम पड़ गया गीता। भगवतः श्री कृष्ण गीयमाना यासा ब्रह्म विद्या भगवत गीता। तो भगवत गीता जी के श्लोकों में यह है कि कहीं कहीं प्रश्न अपने आप बनते हैं और उसका उत्तर भी अपने आप होता है। उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु न च माम तानि कर्माणि निवदन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, ये जितने भी पंच महाभूत समुदाय है सबको मैंने बनाया। कल मैंने आपको बताया था कि सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत एकमेवा अद्वितीयम। वो ब्रह्म एक है परंतु अद्वितीय है। अद्वितीय के ऊपर जो है ना ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों में ये लिखा जाता है और कहते हैं कि वो सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है, ये है। उसके जैसे जाति वाला कोई नहीं है, सजातीय आम का जाति आम है, जामुन नहीं हो सकता, ब्राह्मण का जाति ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं हो सकते, इसलिए ईश्वर क्या है, कोई सजातीय नहीं है, किसी के जाति में वो नहीं है, वो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शूद्र है, विजातीय भी नहीं है, भिन्न भिन्न जाति वाला नहीं है, आम और जामुन में भिन्न भिन्न जाति हो गए ऐसे भी नहीं है, आम के वृक्ष है तो उसके फल उसके फूल सब सजाती है और स्वगत भेद से रहित है, उसका कोई स्वगत नहीं है। जैसे आम का पेड़ है तो उसमें टहनी है, पत्ते हैं, फूल हैं, ऐसे परमात्मा में नहीं है। क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि आप जो है ना इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है ना मन है, शरीर से श्रेष्ठ जो है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे समष्टि अहंकार, उससे परे महतत्व, उससे परे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ब्रह्मादि लोक, और उससे परे जो तत्व है वो इतना सूक्ष्म है कि वो ब्रह्म तत्व है, वो आत्मा तत्व है। इंद्रियाणि पराणि अहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धे परस्ततु सह। ये कठो उपनिषद में और गीता जी के ये दूसरे अध्याय पर भी आया है, स्थिति प्रज्ञ का जहां लक्षण बताया। इसलिए यहां पर भगवान को ये लोगों ने पूछा प्रश्न है कि उदासीन वत, आप उदासीन नहीं है लेकिन उदासीन के समान हैं। जब कोई घर बनाता है परिवार बनाता है, यदि वो उदासीन हो जाए मौनी हो जाए चुपचाप बैठ जाए तो उसके संसार नहीं चलेगा। और आप कहते हैं कि मैं उदासीन के समान जो है ना, नदी में कोई घूम रहा है किनारे बैठा है और नाले में गंदगी जा रहा है, फल जा रहा है, मुर्दे जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप देख रहा है, तो ये संसार कैसे बनेगा, ऐसे प्रश्न कोई करे तो उसके ऊपर ये श्लोक है, मया धक्खेण प्रकृति शूयते स चराचरम हेतुना अनेन कुंतेय जगत भी परिवर्तते। ये श्लोक उसके ऊपर है। शंका ये है कि संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को रचना परमेश्वर करता है और परमेश्वर की वाणी है कि उदासीनवद आसीनम, ये नौवां श्लोक में ये कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निवदन्ति, मुझे संसार के जितने भी गुण दोष कर्म हैं बंधन में नहीं बांधते, मैं बंधन में नहीं आता। एक गांव में जो है ना बराती था तो गए हम लोग शादी में, बोले आओ महाराज, गए तो जिस पुरोहित था ना वो पुरोहित के साथ हम भी गए थे, ठंडी का दिन था, चार आदमी थे, तो एक माता जी जो है ना बढ़िया चाय बना करके लाया, ठंडी में बढ़िया चाय लाया वो, चारों का बनाया, तो और दो पंडित और आ गए, तो एक ने कहा कि थोड़ा चाय और होता तो अच्छा रहता, तो माता जी ने कहा कोई नहीं बापू ये ठीक है हम ले आते, तो चाय को ले गया, वो ले गई चाय को और लोटा में जो है ना एक लोटा पानी छोड़ दिया हमारे सामने उसी में, तो बोले महाराज ये आठ आदमी का चाय है, आप छह आदमी हैं ये आठ आदमी आप पियो, तो चाय न पी पावे न फेंक पावे न कुछ नहीं हुआ। बोले कि इसमें यदि बंटवारा कर दिए होते तो थोड़ा थोड़ा मिल गया होता, लेकिन वो ज्यादा होने से ज्यादा बुद्धिमान होने से वो काम ही बिगड़ गया सब। तो भगवान के सामने ये शब्द है कि भूत ग्रामम जो शब्द आया है, संपूर्ण भूत प्राणी प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमम कृष्णम, आठवां श्लोक में कि संपूर्ण प्राणी समुदाय को जो मैं बनाता हूं, आप बनाते तो हैं लेकिन उदासीन होकर के बनाते हैं, तो बोले ऐसे नहीं है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जड़ और चेतन जितने भी प्राणी है, चर माने ये चेतना और अचर माने जड़। चर का अर्थ होता है चरति गच्छति इति चरह, जो चलता है फिरता है खाता है उसको चर बोलते हैं। चर चरति गच्छति इति चरह, चर गति भक्षणयो धातु है जी, चर गति भक्षणयो एक धातु है पाणिनि में व्याकरण में, चर गति भक्षणयो। गति माने ज्ञान प्राप्ति और भक्षण माने भोजन करना, इस अर्थ में चर धातु का प्रयोग होता है। इसलिए गति का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, गति का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति, और गति का अर्थ है चलना। आप चल भी सकते हैं, स्वर्गादि जा सकते हैं, आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ये प्राणी मात्र को चर कहा गया है। इसलिए चर का अर्थ है चरति गच्छति चरह, और अचरम न चरति न गच्छति न बदति इति अचरह जड़। जड़ को जो है ना अचर कहते हैं और चर को जो है ना चेतन कहते हैं। चेतन को और जड़ को बनाने की जो परंपरा है उसको यहां पर सचरा चरम, चरा चरेन सहितम सचरा चरम ऐसे है, चराचर के साथ। कुछ ऐसे जीव हैं जो माता पिता के संबंध से होते हैं उसको कहते हैं जरायुज, मनुष्य को जरायुज। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे से होते हैं तो उनको कहते हैं अंडज। कुछ ऐसे होते हैं जो पसीने से निकलते हैं स्वेदज, और कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि से आते हैं पेड़ पौधे वृक्ष आदि फल इत्यादि, तो इनको कहते हैं उद्भिज। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, चातुर्वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्णों में चार प्रकार के अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज ये चार प्रकार के जो है ना खानी है विभाग है, और चार प्रकार के विषय को जो सर्जना करता है उसको शास्त्रों में सचराचरम ऐसे संपूर्ण जगत की जो है जो रचना करे चराचरेन सहितम सचराचरम। कौन रचना करता है तो कहते हैं मया अध्यक्षेण, मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रकृति ही सूयते, प्रकृति बनाती है। परमात्मा यहां अध्यक्ष है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जिसकी आसन थोड़ा ऊपर है कुर्सी में बैठा है वो अध्यक्ष है, और जो नीचे बैठता है वो श्रोता है। जो नीचे बैठता है वो किसान है, क्योंकि कृषक है खेती का काम करता है, और जो ऊपर बैठता है ना वो जो है ना अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब है कि आप एक अध्यक्ष हैं, अधि प्लस अक्ष ऐसे है, अधि उपसर्ग है और अक्ष शब्द है। अक्ष जो है ना हलंत नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, अक्ष अक्षिणी अक्षिणी। आपके पास जो अक्ष है वो दो है, दो नेत्र आपको ईश्वर ने दिया है। आपके पास तीसरा नेत्र है लेकिन वो तीसरा नेत्र दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए दो अक्ष जो है ना, ब्रह्मा जी के पास कितना अक्ष है? चार। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी है ना, चार आंख। महादेव जी के पास कितना आंख है? पांच, पंचमुखी महादेव। और विष्णु भगवान के पास कितना आंख है? दो ही है, ये दो ही आंख है, उसके चार आंख नहीं है। लेकिन शंकर जी को कभी कभी शास्त्रों में कहा गया है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मयी नकाराय नमः शिवाय। आपका जो नेत्र है ना तीन है, त्रिनेत्र जो है ना ये बाबा जी हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों नेत्र जिनके हैं उनको कहते हैं शंकर त्रिनेत्र। आपके पास जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद जिनके नेत्र हैं वो उस महादेव को कहते हैं त्रिनेत्र। और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से परे जो ओंकार है उसको तुरियातीत कहते हैं। इसलिए परमात्मा के पास क्या है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीन अवस्था है। इसलिए इनको भी शास्त्रों में जो है ना त्रिनेत्र कहते हैं शिव जी को। एक है चंद्रमा, एक है सूर्य और एक है अग्नि, जिनके नेत्र हैं उनको कहते हैं त्रिनेत्र। शिव जी के तीन आंख हैं, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, एक अग्नि है। चंद्र सूर्य दिखाई पड़ते हैं, अग्नि दिखाई नहीं पड़ता। चंद्र और सूर्य जो है ना दोनों नेत्र हैं। धन के देवता कौन है, धन के प्राण देवता जो है ना चंद्रमा है। चंद्रमा, बिना चंद्रमा के धन फसल नहीं होगा। और प्राण की अधिष्ठात्री देवता जो है ना सूर्य भगवान है। यदि सुबह हो गया, छह बज गया, पांच बज गया और सूर्योदय हो गए तो आपकी निद्रा अपने आप खुलेगी, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं उठाना पड़ेगा, कि सूर्य जो है ना प्राण के अधिष्ठात्री देव हैं। और चंद्रमा जो है ना, रई जो है चंद्रमा, ये धन के अधिष्ठान देवता है। देवता तो कंजूस होते हैं ना, वरुण केवल रखवाला करता है, वरुण केवल रखवाला करता है। एक घर में, एक गांव में, देहात अंचल था और माटी का घर था, वहां चूहे बहुत रहते थे। तो उस समय जो है ना पांच पैसा में नौकरी लोग करते थे, बहुत पहले की बात है। नौकरी करके वो लोग आते थे, वो एक उनका घर का मालिक, और एक रूप एक पैसा जो है ना घर में रखता था, सब खर्चा होता था। एक दिन ऐसे हुआ कि देखा कि एक महीना हो गया और तीस पैसा होना चाहिए था, कहां गया पैसा। तो पत्नी को पूछा उसने, बोले मैं ऊपर में रखता हूं, ये पैसा कहां गया, घर में तो कोई आता नहीं। तो देखते देखते पत्नी ने कहा कि देखो महाराज, ऐसे है, मैं तो लिया नहीं, ये पैसा तो यहां रहता था, कोई लिया होगा जरूर। तो देखते हैं कि रात में एक बहुत बड़ा चूहा वो आया, ऊपर में जो पैसा रखा था ना वो ले करके गया। और चूहा जब ले करके गया और बिल में रखा तो पता चला कि चूहा ही चोरी करता है पैसा को, ये कोई नहीं करता। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो रात में चूहा आवे और चोरी करके ले जावे और सुबह उठ करके इधर उधर घूमने जावे। वो दोनों पति पत्नी गए और बिल में जब हाथ दिया तो उनका पैसा, तीस पैसा जो है ना वहां पड़ा था, उसको लाए और अलग जगह पर रखे। रात में चूहा आया, कहते हैं कि पैसा को देखा उसने, जब पैसा नहीं मिला तो उसको बड़ा छटपटाट हुआ, ऊपर गया तो बर्तन खाली है। पति पत्नी देख रहे हैं और चूहे को वो स्थिति बनी उसका, इतना भयंकर स्थिति बना कि देखते देखते हार्ट अटैक हुआ और मर गया, उधर चूहा मर गया। तो एक महापुरुष ने अपने डायरी में लिखा कि चूहा को गुरु बनाना चाहिए। जब चूहे की वो स्थिति है, पैसा किसी दूसरे का, घर किसी दूसरे का, रहने वाला कोई दूसरा, और इसमें चूहा जो है वो स्थिति हो गया कि उसके जीवन में संशय हुआ, चिंता हुआ, टेंशन हुआ, पैसा तो उसी का था नहीं। तो उस महापुरुष ने जो है ना अपने डायरी में लिखा कि चूहे हमारे गुरु है। तो उनसे लोगों ने पूछा कि ये क्या है, बोले यही हम लोग की स्थिति है, प्राणी की स्थिति, चूहे के बराबर। रखवाला कोई करता है, लाता कोई है, और चूहा जैसे चला गया तो प्राणी जो है ना ऐसे चला जाता है। यह ना अपना का होता है, ना दूसरे का होता है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष का मतलब ऐसे है कि तीन नेत्र जिनका है वो शिव है, और परमात्मा को अध्यक्ष इसलिए माना गया है कि उनकी एक आंख नहीं है। सहस्त्र शिरिखा पुरुषः, सहस्त्राख्यः, सहस्त्रपाद, स भूमि गुंग सर्वत स्मृत्वा तत्तिष्ट दशांगुलम। आपके जो है ना हजारों हजारों आंख हैं, सहस्त्र शिरिखा पुरुषः, सहस्त्राख्य, सहस्त्र पैर है, सहस्त्र हाथ है, इसलिए विराट रूप में आप क्या हैं। तो उपनिषद में आया है ना, कल मैंने फिर बताया था, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष। कर्मों के अध्यक्ष जो है ना ईश्वर है। जो कर्म आप करते हैं साक्षी है, वो चेतन है वो, लेकिन केवलो निर्गुणस्य, निर्गुण है, और निर्गुण होने से गुण नहीं है। गुण का अर्थ है रस्सी, जिसके पास तीन रस्सी होता है ना वो जीवात्मा है। हमारे पास तीन रस्सी है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। एक रस्सी छूटे तो दूसरे रस्सी, दूसरे रस्सी छूटे तो तीसरे रस्सी, इसलिए जीव है। और परमात्मा के पास कोई रस्सी नहीं है, निर्गुण, निर्गतः गुणा यस्मात, जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। जिसके पास रस्सी नहीं है ना, उसी को ही परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और जिसके पास रस्सी है, रज्जू है, वही जीव है। इसलिए हम लोग को जो है ना शास्त्रों में जीव कहा गया है, क्योंकि बहुत से रस्सी है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं मया अध्यक्षेण, मैं अध्यक्ष हूं। इसका मतलब मैं ये संसार के साक्षी हूं, संसार के दृष्टा हूं, संसार को नित्य निरंतर कर्म के अध्यक्ष होने पर देखता हूं, लेकिन मेरे में ये संसार नहीं है। ये संसार मेरे में तो है, लेकिन मैं संसार में नहीं हूं, क्योंकि मैं असंग होने के कारण से संसार नहीं है। क्यों संसार नहीं है? कि परमेश्वर त्रिगुणात्मिका नहीं है। ये ईश्वर यदि त्रिगुणात्मिका हो तो उसमें संसार होगा ना, जब उसमें त्रिगुण ही नहीं है तो संसार होगा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति। यहां प्रकृति का अर्थ है कि वो त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, हेतु न अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये त्रिगुणात्मिका शक्ति हेतु के द्वारा, निमित्त के द्वारा, मुझ अध्यक्ष के माध्यम से चराचर जगत को व्यक्त और अव्यक्त रूप में निर्माण करता है। व्यक्त का मतलब है जो दिखाई देता है, अव्यक्त का मतलब है जो दिखाई नहीं पड़ता। इस समय माता पिता के रूप में है, लेकिन पुत्र नहीं होने से माता पिता नहीं है। यदि पुत्र रत्न होगा तो माता पिता का नाम पड़ेगा, लेकिन पति और पत्नी के रूप में है, माता पिता के रूप में नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है, इस समय दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए व्यक्त जो जगत है और अव्यक्त जो जगत है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में युक्त जो संसार है, व्यक्त और अव्यक्त जो जगत, इस जगत की रचना परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर यदि रचना करता है तो जगत का करता है, जगत का भरता है, जगत का जो है ना दृष्टा है। बोले सब भी होने पर भी नमाम कर्माणि लिपन्ति नमे कर्म फले स्प्रिहा। कर्म के फल को परमात्मा नहीं माने नहीं चाहते, जो कर्म की फल है उसकी इच्छा ईश्वर नहीं करते। इसलिए कर्म में जो है ना वो बंधायमान नहीं होते। शुभाशुभ कर्म का जो ज्ञाता होने पर भी शुभाशुभ कर्म के बंधन में ईश्वर नहीं होता। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि एक विवाह करने की बड़ी इच्छा है। तो बोले क्या करना है? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप भगवान विष्णु हैं, अपना रूप दें। तो भगवान ने कहा कि देखो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण जगत मैं ही हूं, मुझसे अभिन्न है, कोई भिन्न नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे रूप चाहिए ये समझ में नहीं आया। एक देवी जी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज ये कृपा करो, मेरे पति जो है बहुत क्रोधी है, और मैं चाहती हूं कि उसका क्रोध शांत हो जाए, कृपा करो। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो नरसिंह अवतार हुआ और नरसिंह अवतार भगवान इतना क्रोधी थे कि हिरण्यकश्यप को मारा। तुम्हारा पति यदि क्रोधी है तो उसको नरसिंह अवतार समझ करके प्रणाम करो, स्वामी अखंडानंद जी ने कहा। और नरसिंह अवतार है, बोले उठने पर भी जो है ना सोए रहता है, बहुत आलसी है, तो बोले उसको मछली भगवान समझ करके प्रणाम करो, वो मत्स्य अवतार। और बहुत मर्यादित है तो रामावतार है, और बहुत नटखट है तो कृष्ण कन्हैया के रूप है, और कुछ काम नहीं करता है केवल बैठे रहता है तो जगन्नाथ महाप्रभु है, ऐसे रूप लो। हर दृष्टि में जो है ना भगवत दर्शन, ये इससे क्या होता है कि आपका जो हृदय है ना वो शुद्ध हो जाएगा, आपका जो मन है शुद्ध हो जाएगा, और आप यदि शुद्ध हैं पवित्र हैं तो संसार नहीं है। संसार के विषय वासना अपने स्थान पर है, लेकिन आप यदि हृदय में पवित्र हैं, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं तो ये संसार नहीं है। इसलिए भगवान नारद जी ने कहा कि मैं विवाह करना तो चाहता तो हूं, लेकिन जही विधि नाथ हो ही तो मोरा, करऊं सोवेगी दास में तोरा, जैसे मेरी कल्याण होगा करना। और भगवान नारद जी विवाह करने के लिए चले, विश्व मोहिनी कन्या है, राजा शीलनिधि है, फूलमाला लेकर के देवी आई, और जब देवर्षि नारद के गले में नहीं दिया और भगवान स्वयं विश्व मोहिनी को लेकर के चले, तो नारद जी को देख करके जो है ना बंदरों ने, वहां जो बैठे हुए थे शिवगण, उन्होंने कहा कि आप तो दुल्हा हैं और आपको फूलमाला नहीं दिया। तो नारद जी ने कहा मैं तो बहुत सुंदर भगवान से कहा था कि आपका रूप चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि देखो जी नारद जी, आप दुल्हा तो हैं, बहुत अच्छी बात है, दुल्हा का पहला कर्तव्य है कि दर्पण में अपने चेहरे को देखना चाहिए। आप दर्पण में अपना चेहरा को देखा कि नहीं देखा? उन्होंने कहा ये तो मैं देखा नहीं। तब भगवान नारद को याद आया, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचर, मुझे परमात्मा अध्यक्ष है, वो ईश्वर, और प्रकृति जो माया है ना वो संसार को बनाती है। प्रकृति का अर्थ है माया। यहां प्रकृति का जो माया, माया का स्वभाव क्या है? मां माने नहीं, या माने जो, तीनों कालों में जो नहीं है, और नहीं होने पर भी जो साक्षात दिखाई पड़ रहा है, इसको वेदांत में माया कहते हैं। ये है, आप पहले कहां थे ये भी पता नहीं, अभी आए हैं ये भी पता है कि मैं बंबई में हूं, लेकिन आप अभी घर में गए और रात को नींद आई, देखो, और जब सो गए तो कैसे सो गए पता नहीं, नींद आई कब और आप कब सो गए, लेकिन सुबह जगे, जगाने वाला भी कोई और है और सुलाने वाला भी कोई और है। जैसे रात में आप सो जाते हैं नींद आती है ना, ऐसे मृत्यु होता है। जिस समय मृत्यु का समय आता है ना, आदमी सोया है और सोते सोते चला जाएगा, उसको ये पता नहीं चलता है कि मेरी मृत्यु आज होने वाला है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से। जो योगी होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, वो परमेश्वर का चिंतन करते करते और नित्य स्मरण करते हैं तो उनको पता होता है, सामान्य प्राणी को ये पता नहीं होता। इसलिए महर्षि नारद जी ने कहा कि दुल्हा तो मैं, शादी तो मुझे करनी है, लेकिन दर्पण नहीं देखा। ये जो दर्पण है, हमारा जो मन है, इसको दर्पण कहा गया है। दुल्हा आप लोग हैं, हम लोग हैं, जीवात्मा दुल्हा है और विवाह करने की बड़ी इच्छा है। वो विवाह किससे करेगी? माया से। मृत्यु से विवाह करने की बड़ी इच्छा है, मृत्यु बड़ी सुंदरी है, उसके जैसे सुंदरी संसार में कोई नहीं है। सारे संसार के लोग जो है ना उससे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु जो है ना विवाह करने की इच्छा मृत्यु की नहीं है। राम जी विवाह करना नहीं चाहते लेकिन शूर्पणखा की इच्छा है। शूर्पणखा चाहती है कि राम मेरे से विवाह करे। इसी प्रकार से ये माया जो है ना, माया को सब लोग चाहते हैं, मृत्यु को सब चाहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मुझ अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूं और प्रकृति सुयते सा चराचरम। ये संपूर्ण जगत की रचना जो है ना माया करती है। एक अर्थ में ये है कि भामती प्रस्थान में माया शब्द का निरूपण वाचस्पति मिश्र जी ने किया है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए दक्षिण भारत के। पत्नी का नाम था भामती और विवाह के समय में भी जिस समय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज वो कह रहा है पंडित, तो वाचस्पति मिश्र जो है ना पुस्तक लिखते थे उस समय। 32 साल के बाद भी जब देवी को देखा, उस समय बिजली नहीं थी, लालटीन जलाया तो देवी जी को पूछा कि आप किसके घर के हैं, कहां के हैं, कैसे आए। तो उनके पत्नी ने कहा कि महाराज मेरा नाम भामती है, मैं आपके देवी हूं, पत्नी हूं, आज 32 वर्ष हो गए और मैं आपके यहां रहती हूं। तो वाचस्पति मिश्र ने देख करके जो है ना उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि पत्नी यहां है, मुझे पता नहीं। ये देखो, विषय होने पर भी विषयातीत, विषय सब है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द जो है कान में है, रस जो है जीवा में है, गंध जो है नाक में है, स्पर्श जो है चमड़े में है और रूप जो है आंख में है। इसलिए पंच महाभूत का जो विषय, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी गंध में है, गंध गुण वाला पृथ्वी है, जल रस वाला है और अग्नि रूप वाला है, पृथ्वी जल तेज वायु, वायु स्पर्श वाला है, आकाश शब्द वाला है और पंच ज्ञानेन्द्रिय में पंच महाभूत की तन मात्रा है, थोड़े थोड़े मात्रा है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो थोड़े हल्दी दिया, थोड़ा नमक दिया, थोड़ा मिर्चा दिया, पूरा नहीं देते। इसी प्रकार से तन्मात्रा, थोड़े थोड़े मात्रा, जितना ही अंश चाहिए भगवान ने व्यष्टि के रूप में दिया। जैसे एक व्यष्टि भंडारा नहीं होता, 50 आदमी है तो व्यष्टि भंडारा, 100 आदमी हुआ महाकुंभ मेला में तो समष्टि भंडारा। समष्टि अहंकार आपके पास नहीं है, व्यष्टि अहंकार है, ये मेरा ये तेरा ये भाव है। इसलिए जो है ना पंच तन्मात्रा, पांच का तन्मात्रा, थोड़े थोड़े मात्रा, और ये पंच तन्मात्रा से रचित जो ये शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर का जो अभिमानी जहां पर ये 24 तत्व से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व से बना हुआ है और कारण में अज्ञान है, अविद्या है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को उठाते हैं, ये जितने भी संसार है, प्रकृति ही सुयते सा चरा चरम। एक महात्मा ने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली की आंख को देखा तो उसने कहा धन्य है भगवान, क्या सुंदर बिल्ली की आंख बनाया। लेकिन उसके दृष्टि किसके प्रति है? चूहे के प्रति। आंख तो अच्छा है, मनुष्य को जब बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो सब कुछ बनाया। तो कहते हैं मुदम आप देव, उसने जब संसार को बनाया तो ये मनुष्य को जो है ना एक पूछ लंबा कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूछ लंबा हो गया तो इसको कहेंगे वानर, अब पूछ को काट दो तो हो गया नर। बिना पूछ के जो है उसको बोलते हैं मनुष्य नर, और पूछ वाले को बोलते हैं बंदर। तो माया जी ने कहा कि बिना पूछ वाले जो मनुष्य है उसका पूछ इतना बड़ा है ये तो श्री हनुमान जी का पूछ जो है ना बहुत बड़ा था सिर्फ लंका को जलाने के लिए, लेकिन मनुष्य का जो पूछ है लंका को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा है कि उसका पूछ का कोई अंत नहीं है। लंका को जलाने वाला हनुमान जी, उनके बड़े बड़े पूछ थे क्योंकि लंका को जलाया, भोग विलास रूपी लंका को जलाया। लेकिन हम लोग का पूछ इतना बड़ा है कि वो लंका को जलाना नहीं है, लंका को जिंदा करना है। तो बोले कि ये भोग विलास रूपी जो है ना व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते, गीता जी में प्रमाण दिया कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है यही जो है माया है। एक अर्थ तो महापुरुष ने ये कहा, वाचस्पति मिश्र ने कहा कि देखो तू मेरी पत्नी, लेकिन 32 साल हो गए पता नहीं, घर में माया होने पर भी विषय होने पर भी विषय का अभाव, इसलिए यहां पर एक शब्द कहा गया है प्रकृति सुयते सा चराचरम। ये संपूर्ण जगत को प्रकृति माने त्रिगुणात्मिका शक्ति माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत को परमात्मा बनाते हैं। यदि आप बनाते हैं तो आप जगत के सृष्टा हैं, जगत के हर्ता हैं, भरता हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि आप सब होने पर भी असंग हैं, आपको संसार के सुख दुख पाप पुण्य नहीं लगता, ईश्वर को ये सब नहीं लगता। इसका मतलब रत्नाकर ब्राह्मण इतना बड़ा महापापी है कि वो मुख में राम का उच्चारण नहीं होता, लेकिन मरा मरा के उच्चारण से राम राम का उच्चारण हुआ और राम राम कहते कहते दिमाग लग गया शरीर में, तो भविष्य में बन गए वाल्मीकि, वाल्मीकि नाम पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसे समय आया कि राम जी ने उनको गुरु बनाया, देखो भगवान राम वाल्मीकि जी को गुरु बनाया। तमसा जी के नदी पर श्री राम जी जब इलाहाबाद होकर के आए तो इलाहाबाद से आगे थोड़े दूर सीतामढ़ी है, वहां गए और सीतामढ़ी में पहुंच करके वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। अरे भगवान राम जी ने कहा कि महाराज 14 वर्ष के लिए मैं आया और मुझे रहने का कोई स्थान, तो श्री राम जी को देख करके वाल्मीकि जी ने बहुत उनको हंसी आई, बोले कि प्रभु आपका नाम मैं नहीं ले सकता था, राम राम नहीं बोल पाया, जिस इष्ट देव राम है आज वो राम मुझे पूछने आया है। जगुपेख न तुम देख निहारे, आप जो है ना संसार के सृष्टा है, जग उपेखन तुम देख निहारे, तुम ही विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आज सबको नचाते हैं, सोई जा नई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इसलिए यही कृपा करो कि आप जगत के साक्षी हैं। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी ये व्यक्ता अव्यक्त जो जगत है इसको जब बनाते हैं तो गीताकार इस बात का निरूपण करते हैं, हेतु न अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये संपूर्ण जगत का जो हेतु है ना मैं हूं। नदियां समुद्र में जाती है और समुद्र से आती है, समुद्र का जल वर्षा के द्वारा गंगा जमुना बना और वही नदियां समुद्र में जाती है। जैसे समुद्र किसी को बुलाते नहीं और नदियां जाती हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण जगत का जो हेतु है ना वो परमेश्वर है। जिस समय आप माया रहित हो जाएंगे, देहाध्यास की निवृत्ति इस देह में हो जाएगा, उस समय ये माया नहीं रहेगा, ये इसका मतलब। जैसे कि अंधकार का नाश प्रकाश के माध्यम से, सूर्य का उदय होने पर अंधकार चला जाता है, लेकिन समष्टि अहंकार का, समष्टि अंधकार का नाश नहीं होता। जो आपका जो अंधकार है ना वो चला जाएगा। आपको यदि प्रकाश आया तो आपके पास अंधकार नहीं है, सूर्य का उदय होने पर संपूर्ण अंधकार चला गया, लेकिन रात्रि में सूर्य का उदय नहीं हुआ और आपके पास प्रकाश है तो आपका अंधकार स्वयं समाप्त हो गया। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त जो अंधकार है ना उसका नाश नहीं हुआ, लेकिन आपके जो अंधकार है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा जब शलाका के द्वारा माचिस की और टुकड़ी के द्वारा आंख में जब काजल लगाते हैं देवियां लोग लगाती हैं तो उसमें मैल नहीं होते, इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा जब संसार को देखता है तो संपूर्ण जगत उसको कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजिबिषे गुंग समाह एवं तो ये नान्न से तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इसलिए गीताकार का ये कहना है कि जो सबका अध्यक्ष है वो चैतन्य है, चैतन्य ही सबका अध्यक्ष है। और अध्यक्ष होने पर 2 अर्थ है, अधि प्लस अख्य, जो संपूर्ण जगत का अध्यक्ष माने मालिक। स्वामी जी ने तो अपने पुस्तक में अध्यक्ष को मंडलेश्वर के रूप में बताया है महाराज ने, स्वामी अखंडानंद जी ने, आज मैं पढ़ रहा था तो मंडलेश्वर जो अध्यक्ष होते हैं वो मंडलेश्वर होते हैं। और मंडलेश्वर का उन्होंने अर्थ किया है मंडल्याम ईश्वर। हमारे यहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, करपात्री जी और स्वामी जी दो ऐसे महापुरुष हुए जो किसी को छोड़ते नहीं थे। पद प्रतिष्ठा से बहुत दूर, कोई पद की इच्छा नहीं, कोई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं। और बड़े अद्भुत, क्योंकि आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यदि चाहेंगे ना तो ईश्वर बहुत दूर है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, उसमें उदाहरण दिया कि निर्माण मोहा मान और मोह से रहित। सम्मान तो आपके पास आएगा, प्रतिष्ठा तो आपके पास आएंगे, आपके पास तो सारा रिद्धि सिद्धि अपने आप आएगा। निर्माण मोहा मान और मोह से रहित हो जाओ। मोह यदि करना है तो भगवान से, और मोह यदि करना है तो शरीर से नहीं। उद्धव जी ने कहा कि गोपिकाओं ये जसोदा और नंद का घर कहां है पता नहीं चला। तो गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जी ऐसे है ना, आप जाओ आगे एक छोटी सी जो है नाली आता होगा और उसमें पानी का धारा बहता होगा तो समझ लेना ये नंद गोकुल ये बाबा जी का घर है, जसोदा जी का घर है। तो गए तो गेट के सामने जैसे गए तो छोटी सी एक नाली पानी का बह रहा था। उद्धव जी ने कहा ये जसोदा जी का घर है, तो देवी जसोदा जी आई, नंद बाबा आए। उद्धव जी ने प्रणाम किया, बोली ये पानी कहां से आया, ये जल कहां से आया। जसोदा जी ने कहा कि पुत्र के वियोग से ये स्नेह जल स्नेह धारा, कन्हैया के वियोग से जो है ना हम लोग का ये जो भाव है जो जल है। उद्धव जी ने कहा कि अब समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझाने जा रहे थे कि वो ब्रह्म है असंग है चैतन्य है, लेकिन ये भाव को जैसे देखा तो गोपिकाओं ने ही सीधे सीधे कह दिया उद्धव मनन भय 10-20 जो होतो सो श्याम संग गए को आराधे ईश। ये मन जो है ना एक दो नहीं है, मन तो एक होता है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान यहां कहते हैं कि जितने भी समस्त भोग्य पदार्थ है उसका जो भोक्ता जीव है, लेकिन जीव क्या है परमात्मा स्वरूप है। उपाधि को लेकर के जीव है, अहम दुखी अहम सुखी अहम भोगी, इसलिए जीव है। ये जीव उपाधि को छोड़ देगा तो निरुपाधिक चैतन्य हो जाएगा, और निरुपाधिक चैतन्य का जो स्वरूप है मैं हूं, माया नहीं है। माया इसलिए नहीं है कि वो त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुणी वाला है रजोगुणी वाला है तमोगुणी वाला है, इसलिए माया संसार के विषय के जो है ना वो करने वाली है कर्त्री है। लेकिन माया से माया तीत जो है ना वो परमेश्वर है, माया शक्ति एक है, माया शक्ति भी संसार में है। ईश्वर की जो माया है ना, इसलिए महाराज लीला में 2 का ही प्रवेश हुआ। भगवान कृष्ण की रासलीला में सिर्फ शंकर भगवान को जाने की अनुमति मिली, क्योंकि शंकर के पास काम नहीं है क्रोध नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के पास भी नहीं है। इसलिए यहां पर गीताकार ने कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ऐसे कहा। फिर भी कहते हैं कि लोग जानते क्यों नहीं है, तो आगे का श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यदि आप जगत के सृष्टा हैं और अध्यक्ष हैं तो आपको लोग जानते क्यों नहीं। तो गीता जी में अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभु ऐसे बता। ईश्वर जो है ना किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। पाप और पुण्य को ग्रहण इसलिए नहीं करते हैं कि पाप पुण्य जो है ना ये शरीर का धर्म है। आप पापी हैं अथवा पुण्यात्मा है ये सिद्ध कौन करता है? आपके मन। यदि मन में विषय दोष आया तो लगता है कि मैं पापी हूं, और यदि मन में पवित्र भाव आया तो लगता है कि पुण्यात्मा हूं। ये अंतःकरण के धर्म है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जो तत्व है ना वो आत्मा है। इसलिए भगवान बार बार इस बात को कहते हैं ना कि भाई अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, अज्ञान से ढका हुआ प्राणी वो ईश्वर को दोषार्पण करता है, ईश्वर के भाव रखता है। तो यहां पर कहते हैं कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, ईश्वर को परम पवित्र बताए ना, परम पवित्र है वो संसार के विषय दोष से रहित है। इसलिए साधक के यहां जो लक्षण की गई है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थिति प्रज्ञ का जब लक्षण आया है तो वहां पर ये बताते हैं कि प्रजहाति संपूर्ण रूप से कामना को भली भांति छोड़ता है। प्रजहाति भली भांति त्याग करता है। कैसे त्याग करता है? प्रजहाति यदा यस्मिन काले कामान सर्वान विषयान, जितने भी कामना है ये सबको छोड़ता है। ध्रुव जी ने केकई को प्रणाम किया तो के ध्रुव जी ने सुरुचि को प्रणाम किया, तो भगवान विष्णु का जब दर्शन हुआ तो ध्रुव जी जब आए तो सुरुचि को पहले प्रणाम किया। उसने कहा कि माता जी यदि आप नहीं होते तो मुझे विष्णु जी का दर्शन नहीं होता। सुरुचि यदि ये शब्द नहीं कही होती कि मेरे गर्भ से जन्म होने के बाद ही राज सिंहासन मिलेगा, ये शब्द का प्रयोग सुरुचि यदि नहीं कही होती तो ध्रुव जी मधुबन में तपस्या करने के लिए नहीं जाते और भगवान के दर्शन नहीं होते। और भगवान के दर्शन होने के बावजूद जब भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांगो, तो भागवत जी का श्लोक है, सब आप लोग जानते हैं, यो अंतः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुक्तां संजीवयत्य क्षण शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोले कि आप एक कृपा करो, यो अंतः प्रविश्य मेरे हृदय में आप आओ, मेरे मन के अंदर आप प्रवेश करो। वाचम इमाम प्रसुप्ताम, मेरी वाणी सो गई है, मेरी वाणी जो है ना संसार के विषय में है, इसलिए संजीवयति उसको आप चेतना दो। अंतःकरण में बैठ करके आप जब आएंगे तो आपका ही दर्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा। इसलिए इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो है वो परमेश्वर का है, उसको लोग इसलिए नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ शब्द का एक अर्थ बताया है, मुह विचित्य धातु है, मूर्छति बुद्धि एषाम ते मूढ़। जिस समय बुद्धि जो है ना विमूढ़ हो जाती है, बुद्धि शक्ति में ज्ञान का विषय नहीं होता, उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ का मतलब है कि जिस समय व्यक्ति विषय भोग की कामना करता है और ध्यायंतो विषयान नित्य, जब विषय का चिंतन करता है तो मूढ़ हो जाता है, वो संसार के विषय में रमण नहीं कर पाता, संसार के विषय में उसको ज्ञान नहीं हो पाता। जब वो संसारी होता है तो मूढ़ हो जाता है, क्योंकि ईश्वर से विमुख हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं माम मूढ़ा अवजानंदी, जो मूढ़ हैं अज्ञानी हैं वो मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? मानुषिम तनुमाश्रितम, ईश्वर को जो है ना मनुष्य समझते हैं, ईश्वर को मनुष्य भाव से वो देखते हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, इसको मनुष्य के रूप में देखते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, इसलिए परम भावम अजानंद, मुझे परमात्मा को परमेश्वर के रूप में नहीं जानने के कारण मम भूत महेश्वरम, मैं संपूर्ण जगत का महेश्वर हूं, और मुझे जो है ना सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। भगवान के विषय का श्रवण जब साधक करता है तो ज्ञानी आनंद लेता है, संत आनंद लेता है, और अज्ञानी सोचता है कि ये भगवान जो है ना संसार में उसको मनुष्य समझता है। इसलिए कहते हैं अवजानंदी माम बूढ़ा, जैसे साल्व था, शिशुपाल था, जरासंध था, कंस था, ये भगवान को मनुष्य मानते थे, लेकिन उसमें भी एक क्रम भेद है जी, आर्तो अर्थाति जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त जितने हुए हैं, जैसे द्रौपदी आर्त भक्त माना गया है, जिज्ञासु में उद्धव आदि आते हैं, ज्ञानी में भगवान सुखदेव जी आते हैं, नारद आदि आते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण का कहना यह है कि अवजानंदिमा मूढ़ा, इसका मतलब सड़ ऐश्वर्य संपन्न जो परमात्मा है उसको अज्ञानी लोग, भोगी लोग, मूढ़ लोग, मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य हूं इस प्रकार से भाव रखते हैं। और आप सीधे सीधे पुराण में जाओ, पुराणिक कथा के अनुसार राम भगवान को 14 वर्ष की वनवास हुआ। भगवान राम जंगल में गए, ये तो लिखा है कि पर्णकुटी बनाकर के नासिक में रहे, लेकिन शौचालय बाथरूम कहां है, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण भगवान जो है द्वारका जी में अमुक बाथरूम बनाया, अमुक शौचालय बनाया, अमुक साबुन से स्नान किया, कुछ नहीं लिखा। कहीं क्यों नहीं लिखा? मानुषिम, वो मनुष्य नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति माम इति सुअर्जुन, उसका जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, इसलिए वो मनुष्य नहीं है। क्यों मनुष्य नहीं है? कि वो माया के अधीन नहीं है। मनुष्य त्रिगुणात्मिका शक्ति के अधीन होने के कारण से हम लोग मनुष्य हैं, और उस मनुष्य में जो माया है वो माया के अधीन है, जीव इसलिए मनुष्य है, लेकिन ब्रह्म मायातीत है इसलिए दिव्य है। लेकिन अज्ञानी लोग उसको जो है ना मूढ़ समझते हैं। कलकत्ता में हम कथा करने की जगह गए तो एक परिवार, पति पत्नी, शेर था डालमिया कोई है वहां, ये स्वामी जी के ही चेले हैं, बड़े लोग हैं, तो उनके घर में बच्चे नहीं हुए हैं अभी, तो उनको जो है ना श्रीजी बाबा मथुरा जी के जो आते हैं ना, वो बड़े अच्छे थे हैं, अभी तो नहीं है, और डोंगरे महाराज जी की परंपरा के हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान को चांदी की मूर्ति दिया, एक चांदी की मूर्ति, और कहा कि कृष्ण को आप रखो, इसको बेटा बनाओ। तो वो भाव वो दोनों पति पत्नी में हुआ, बेटा बनाया। जब 5 बज जाता है ना तो मूर्ति से आवाज आता है कि 4 बजने वाला है, उठो। अब कई विपत्ति आ जावे तो जो कृष्ण भगवान की जो फोटो है, जो मूर्ति है चांदी का, उसको लोग सुलाते हैं, मन में जो है ना बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, खिलाते हैं, वो भाव वो पति पत्नी में है। तो मैंने उसके पति को पूछा, जवान है, 40 साल का होगा, बोले कैसे लगा? बोले महाराज पुत्र की जरूरत नहीं है, वो भाव हमको आ गया है कि सब कुछ यही कन्हैया है, सब कुछ यही कृष्ण है। इसलिए ऐसे भाव जगत में आप जब जाएंगे तो भगवान भी कहा है नाहम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां गान करते हैं वहां मैं रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं और कहीं नहीं हूं। तत्र तिष्ठामि नारद, विष्णु पुराण में आया है, मैं वहां खड़े रहता हूं। तिष्ठामि शब्द का प्रयोग है, तिष्ठामि माने खड़े रहता हूं। तो विष्णु जी से लोगों ने पूछा खड़े क्यों रहते हो? बोले सत्संग में कौन सुनता है, कोई सोता है उसको मैं देखता हूं, कोई चद्दर बुनता है उसको देखता हूं, बच्चों की स्वेटर लोग लगाते हैं उसको मैं देखता हूं, इसलिए खड़े खड़े मैं रहता हूं। इसलिए भगवान तत्र तिष्ठामि खड़े रहता हूं। बड़ा अद्भुत लिखा है, श्री राम जय जय राम श्री राम, श्री राम जय जय राम श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल।